सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उलहक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
वेलकम टू सोच विचार। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि हमारा गुमशुदा भाई वापस आ गया। अंजुम अल्ताफ को 2 साल से पता नहीं कहाँ जंगलात में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में फिर फिर के आज वापस आ गया। और वो वापस इसलिए आया है कि उसने कहानी सुनी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कह रही है कि हमारा बच पचा इसी चीज में है, इसी चीज में है कि अगर हम चीज को खत्म कर देंगे तो अंजुम साहब आपको चीज से क्या लगाव है जो आप इतना कह रहे हैं? इन्होंने मुझे आज फोन करके कहा है कि भाई चीज लेते आना अपने साथ, क्योंकि मैं अमेरिका से वापस जा रहा हूं। इनको चीज से बड़ा लगाव है। बताइए अंजुम, क्या इकोनॉमिक सब चीज क्या है?
बस कुछ चीज ही ऐसी हुई कि यार वापस आने पे मजबूर हो गए। तो अब ये जो है इसको इस पे सीरियसली बात करनी है या इस पे किस तरह से बात की जाए?
हम तो हर ये पॉडकास्ट बड़ा सीरियस पॉडकास्ट है, आप इसका मजाक ना बनाएं, बड़े सीरियस बात करें पॉडकास्ट पे कि क्या है ये इकोनॉमिक्स ऑफ चीज है क्या जो आप बताइए।
नदीम मेरी तो समझ
ही नहीं रुक रही, क्या करें?
मेरी तो समझ में नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कि ये जैसे कुछ बच्चों को स्टोर का हवाला कर दिया है उनके, और वो जो है वो उनको सिर्फ यही समझ आ रही है कि ये बंद कर दो वो बंद कर दो। तो उसमें वो चीज भी शामिल हो गई है। हालांकि मेरी समझ में नहीं आता कि ये चीज को बंद करने से क्या होगा।
नहीं तो वो कहते हैं, देखें जी आप जरा सीरियस हो जाते हैं, वो कहते हैं जी कि नॉन एसेंशियल चीजें बंद करते हैं।
हाँ
ठीक है, अब चीज नॉन एसेंशियल हो गया तो मुझे बताइए कि क्या मतलब ये इस तो मक्खन एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? है और उसके बाद फिर क्या गाड़ी भी नॉन एसेंशियल नहीं है? ठीक है तो मैं एक कपड़ा पहन लूं, 2 क्यों? मेरे पास कमीजें हैं, 1 कमीज काफी नहीं है? ठीक है, उसके बाद हमारे पास घरों में फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 2 कमरे खाली पड़े हैं भाई, तो मैं उनका क्या करूं?
हाँ नहीं वो तो आज वजीर आजम ने ना कि कितनी अजीब बात है कि हम, उन्होंने कहा कि कितनी अजीब बात है कि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी जो है वो पड़ी हुई है जो कि लॉक्ड कैपिटल है।
अच्छी बात है।
हाँ तो वो तो तुम्हारे कमरे लेने वाले हैं।
नहीं नहीं वो तो देखे ना, वो तो आपको याद है मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है हर जगह, मैं तो बड़ा इस पे लिखता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो, ठीक है ना। इसको तो मैं बार बार कहता हूँ कि वो तो इसको डेट कैपिटल है ना, वो डेट कैपिटल को तो हम करें ना रिलीज,
तो क्या करें उसको प्लॉट कर दें?
नहीं नहीं प्लॉट कर दें, तो देखे ना वो फिर डेट कैपिटल को और डेट बनाने वाली बात है प्लॉट करना।
हाँ
ठीक है ना, मैंने इस पर डेट कैपिटल अभी लिखा है, मैंने अपनी किताब में लिखा है मोनेटाइज फॉर ग्रोथ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल देखें ना, अगर आप बिजनेस एज यूजुअली कर रहे हैं ठीक है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप ब्यूरोक्रेट्स के घर लेके उसमें आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना दें जिसके अपार्टमेंट्स भी हों सब कुछ हो, तो हाउसिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। देखिए आप मेरे से चले, आप इस पे बहस करें, बताइए।
नहीं नहीं मैं तो उस सवाल पे वापस जाना चाहता हूँ जो कि वो उन्होंने कहा है कि ये रेडिकल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और जिसमें बहुत जो बड़ा सवाल पोज किया है वो ये है कि व्हाट डज अ कंट्री विदाउट डॉलर्स डिजर्व। तो हमें इस सवाल का जवाब देना है कि जिस मुल्क के पास डॉलर्स नहीं है वो क्या चीज डिजर्व करती है, इसकी हमें लिस्ट बनानी है।
बताइए।
ठीक है,
लीड करिए।
तो एक तो ये सोच का तरीका हो सकता है कि हम लिस्ट बनानी शुरू कर दें और कहें कि चीज मत खाओ, मक्खन मत खाओ, मार्जरीन मत खाओ, या हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क के पास डॉलर्स क्यों नहीं है और वो कौन सी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से ये डॉलर्स की इतनी कमी हो गई है। तो वो सीधा सीधा आपको एक्सपोर्ट पॉलिसीज पे ले जाएगा। तो पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि بنگلہ دیش جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ اٹس اے ہیوج برڈن آن پاکستان, اس کی ہم سے دگنی ایکسپورٹس ہو گئی ہیں جبکہ ان کے پاس نیچرل ریسورسز بھی اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں. تو یہ جو اتنی بڑی کمیٹی بنی ہوئی ہے, یہ بجائے یہ چیزیں سوچنے کے وہ کہہ رہی ہے کہ پنیر نہ کھاؤ, یہ تو کوئی بہت ہی اہم خانہ بات مجھے لگ رہی
ہے. بڑی زیادتی ہے یار, بہت زیادتی, اتنی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کو آپ اہم خانہ بات کہہ رہے ہیں, اتنی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اور آپ اس کو اہم خانہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ ایسی بلاسفیمس باتیں نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. بڑی سمپل سی گزارش ہے آپ سے کہ اگر ہم امپورٹس نہ بند کریں گے, ٹھیک ہے, چلیں چوائس پہ بڑی مشکل بات ہے پر چوائس بنانی پڑے گی کسی نے. آفٹر آل گورنمنٹ نے چوائس تو بنا لیا نا, ریگولیٹری ڈیوٹیز تو بہت چیزوں پہ لگائی ہیں, ریگولیٹری ڈیوٹیز تو تین راؤنڈ میں لگ چکی ہیں, تو اب امپورٹس تو ہماری بہت مہنگی ہو چکی ہیں. تو انہوں نے ایک قسم کا وہ کام کیا, اب بہت بڑے بڑے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹس کو بند کرو. آپ کے میرے دوست حفیظ پاشا نے بھی یہی کہا کہ امپورٹس کو بند کرو, ٹھیک ہے. تو امپورٹس کو تو وہ ان کو بند کریں گی, ضرور کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹس کو بند نہیں کرنا چاہیے, تو آپ مجھے پہلے ریزن بتائیں کیوں امپورٹس کو بند نہیں کرنا چاہیے.
ندیم دیکھو یہ اس کے دو جواب ہیں, ایک تو یہ کہ کیا ہم واپس امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی پالیسی پہ جا رہے ہیں, اور کیا ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ
سوری آپ نے یہ بالکل, میں آپ کی بات نہیں یہ جانے دوں گا کہ واپس امپورٹ سبسٹیوشن پہ جا رہے ہیں, ہم تو امپورٹ سبسٹیوشن کر رہے ہیں میرے بھائی.
نہیں مطلب یہ
مطلب گاڑیوں پہ کیا امپورٹ سبسٹیوشن نہیں ہے, تو کیا ہے
مطلب یہ کہ اب ہم چیز امپورٹ کر رہے ہیں نا, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب چیز ہم باہر سے نہیں امپورٹ کریں گے, ہم خود جو ہے چیز بنائیں گے یا ہم چیز کھائیں گے.
نہیں آپ دیسی پنیر کھائیں نا,
دیسی پنیر نہیں. تو دیکھو دو چیزیں ہیں, یا تو پنیر پہ ڈیوٹی لگا دیں, اور یا اس چیز کا تجزیہ کریں کہ پہلے کتنی چیزیں ہم بین کر چکے ہیں. ہم نے شراب بین کر دی ہے, ہم نے منشیات بین کر دی ہیں, تو کسی کو کیا اسمگلنگ کا نہیں پتا کہ اسمگلنگ کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ خرچ اتنا ہی ہوگا, لوگوں کو دگنی قیمت پہ ملے گی, اور جو ڈیوٹی حکومت لیتی ہے وہ بھی اس میں سے نکل جائے گی.
ٹھیک ہے اوکے, تو اب ڈالر کے مسئلے پہ آ جائیں. میں آپ سے اگری کر جاتا ہوں کہ ہم امپورٹس کو تھوڑی بند کرنا چاہیے. امپورٹس کو بند کرنے کا اور بھی بڑا نقصان ہے. دیکھیں نا, آپ امپورٹس بند کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کئی امپورٹس انپٹس ہوتی ہیں اس سے کچھ اور بن جاتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل دیکھیں نا, اگر چیز آ رہا ہے, اگر کوئی اچھا پیٹزا بنا کے کھا رہا ہے, اب چیز اگر نہیں امپورٹ کریں گے تو پیٹزا کی انڈسٹری تو مر جائے گی نا. اور پیٹزا کی انڈسٹری مر جائے گی تو بڑے لوگ انمپلائڈ بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, اب پیٹزا لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, چیز اس کے لیے چاہیے تو آنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ سوچیں گے کہ جی اب یہ لوگ جو ٹائیاں پہنتے ہیں, ٹائی تو ہمارے لیے انسینشل ہے, ہم ٹائی نہ پہنا کریں, ٹائی کی امپورٹ بند کر دیں گے, تو کئی لوگ جو ان سے ان کی نوکریاں ڈپینڈ کرتی ہیں اچھے کپڑوں پہ ٹائیوں پہ, تو ان کی نوکریاں بھی چل جائیں گی. تو ہمیں اگر امپورٹ بند کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ امپورٹ کہیں ان پٹ بھی ہو سکتی ہے, اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ صرف وہ یشی کے لیے. چلیں اس کو چھوڑ دیں. اب ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھائیں. میں کہتا ہوں کہ میں اور آپ ایکسپورٹ بڑھا ہی نہیں سکتے. بڑی دیر پہلے ملٹن فریڈمن نے کہا تھا ایک دفعہ ہمیں کلاس میں کہ بھائی جان, اگر تم اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہیں پتہ مارکیٹ کیا ہے اور تم چیزیں بنا سکتے ہو اور تم بیچ سکتے ہو, تم ایکسپورٹ کر سکتے ہو, تو تم پھر جا کے امیر کیوں نہیں ہو جاتے, تم یہاں کیوں بیٹھے ہو پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ میری بات مانیں گے, آپ اور میں ایکسپورٹ تو نہیں کر سکتے.
نہیں ندیم دیکھو, تم اور میں تو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے پھر, مگر یہ بھی کسی نے کہا تھا کہ جو کیپٹلسٹ نظام ہے, کیپٹل نظام کا جو ہے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے کے ہاتھ سے پیسے آپ لے لیں جو کہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ پیسے کو کیا کرنا ہے, اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ٹرانسفر کر دیں جن کو یہ آتا ہے کہ پیسے سے پیسے کیسا بنایا جاتا ہے.
That's called the banking system. ٹھیک ہے نا, وہ تو بینک کا کام ہے نا, آپ کا میرا کام تو نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ اور میں اب ماشاءاللہ جس عمر پہ آ گئے, ہماری سیونگز ہیں کچھ, ٹھیک ہے, ہم نے سیونگز اپنی رکھی ہوئی ہیں بینکوں میں یا اسٹاک مارکیٹ میں یا کہیں بھی, ٹھیک ہے. تو کوئی ہمارا پیسہ لے کے اب استعمال کر رہا ہے, اور اگر وہ اچھا کام کرے گا تو ہم بھی کھائیں گے. तो प्रिज्यूमली वो इस्तेमाल कर रहा है पैसा लेके कि कोई एक्सपोर्ट करे, कोई काम करे, कोई ताकि हमें भी रिटर्न मिले, ऐसी निजाम हाँ, चलता है ना, ठीक है ना।
हाँ नहीं, मगर अगर अगर सारा पैसा लेके आप उसको जमीन में लगा दें, क्योंकि और जो है कोई चीज आप किसी चीज का आपको एतबार नहीं है कि किस दिन वो कहें कि आपके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्रीज हो गया है, आपके स्टॉक जो हैं वो, आपके बॉन्ड जो हैं वो फ्रीज हो गए, तो वो जो पैसा है जो बैंकिंग सिस्टम का काम है वो तो,
फिर आप जो मुझे बात कह रहे हैं वो तो ये है कि जैसे एक जमाने में होता था कि वो जो आ जाते थे लश्कर नॉर्थ से, वो आके धड़ाधड़ महमूद गजनवी या कोई जो हमारे हीरोज हैं, ये तो बेसिकली डाकू थे ना, आके यहाँ लूट मार करते थे पाकिस्तान में, ठीक है। तो हमारे आबा हम हैं जी, क्या कर रहे
हैं आप, तो ब्लास्फेमी की तरफ जा रहे हैं।
कि अगर वो आके लूट मार करते थे तो हमारे आबा अजदाद ने उस जमाने में बना लिया था तरीकेकार उनसे पैसे छुपाने का, ठीक है, कि सोना खरीद के दबा देना, ठीक है, इस किस्म की चीजें कर देना कि वो ले ही ना सके। एक और तरीका था जो फिर वो महमूद गजनवी ने तोड़ दिया है, वो हिंदुओं ने ये बनाया हुआ था कि जी वो मंदिर में लगा देते थे, मंदिर से चोरी नहीं लोग कहते समझे थे करेंगे, ठीक है, पर वो आके उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो लोगों के पास तरीकेकार थे चीजें छुपाने के, उसमें भी मसले थे। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा वो क्रुसेड्स में वो हम एक टर्किश जनरल गया था लड़ने, तो वो अपने साथ सारी दौलत लेके गया था क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर सकता था, रख नहीं सकता था कहीं, ठीक है, सारी दौलत साथ लेके गया, हार गया तो दौलत भी चली गई साथ ही उसकी, ठीक है। तो अब मसला ये है कि
बीवियों को भी वो ताले लगा जाते
ताले
थे,
लगा, ठीक है ना। तो अब कहने का ये मतलब है, और अब कैपिटलिस्ट निजाम कैसे चलता है, कैपिटलिस्ट निजाम ऐसे चलता है कि अच्छी हुकूमत होती है जो कि बड़ी क्लियर तरीके से आपको रूल्स ऑफ द गेम देती है और फिर पीछे हट जाती है। अभी आपने देखा सेरेना विलियम्स का मैच खराब हो गया क्योंकि अंपायर बीच में घुस गया, तो इसी तरह अगर हुकूमत मैच में घुस जाए तो मैच खत्म हो जाता है, वो रो रही है अभी तक सेरेना विलियम्स, ठीक है। तो हुकूमत, आप कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हुकूमत का है कि हुकूमत को हम ना ट्रस्ट कर सकते हैं, ना हुकूमत हमें काम करने देती है, आए दिन कोई नई नई स्टूपिड के रूल्स बदल देती है रोज। अब वो तो रूल्स ऑफ गवर्नेंस जो आपने भी सीखा मैंने भी सीखा बदलने ही नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत सोच विचार के बाद कभी कभी बदलते हैं, उसको कहते हैं लीगल चेंज, लॉ चेंज होती है, यू डोंट डू इट रैंडमली। ये तो रोज एक नया टैक्स लगा देते हैं, रोज कोई विदहोल्डिंग टैक्स को कुछ लग जाता है, ठीक है, जैसे आपने कहा रियल एस्टेट पे भी लग जाएगा, उधर भी लग जाएगा, तो लोग फिर ढूंढते फिरते हैं कि कहां हम पैसे बचाएं इनसे, जिसको हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। तो ये तो फिर हुकूमत की बात आ गई ना, इसमें इकोनॉमिक्स की क्या ताल्लुक है, इसमें तो हमें हुकूमत ठीक करनी है।
वो नदीम, वो टैक्स पे मुझे एक ख्याल आया कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता था सवाल, कि रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि हर टिकट जो है उसकी कीमत 10 रुपए बढ़ा देंगे क्योंकि ये पैसे हम डैम में देना चाहते हैं।
बिल्कुल सही।
तो ये तो एक तरह का टैक्स इम्पोज कर रहे हैं कंज्यूमर्स के ऊपर,
तो पहले भी किया हुआ इन्होंने, आपको
टैक्स की जो अथॉरिटी है वो तो सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है ना, को हर शख्स अपनी मर्जी से तो टैक्स नहीं लगा सकता।
ये तो इसको कहते हैं ना, वो क्या था, एक वो निजाम सिक्का था या क्या, सिक्का शाही है क्या, ये जो चीज जो एक दिन के लिए, वो कहानी आपको याद है ना, क्या कहानी थी वो बताइए।
याद है क्या, हाँ वो बच्चा सिक्का था,
हाँ क्या था वो कहानी, क्या थी, समिया भी हमें ये हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, ये एक दफा इन्होंने पॉडकास्ट हमारे साथ किया था, आज ये भी ज्वाइन कर रही हैं। हाँ जी बताइए, आप निजाम शक्का की स्टोरी सुनाएं।
हाँ सक्का की, बच्चा सक्का की स्टोरी ये थी कि उसको मुगल बादशाह ने कहा, उसको बहुत, उसने कहा मुझे, मैं ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा, तुम एक दिन के लिए मुझे बादशाह बनाओ। तो वो एक दिन के लिए जब बादशाह बन गया तो उसको ब्राइट आइडिया ये आया कि उसने जाम के दाम चलाए, उसने कहा कि ये जो कॉइन्स हैं वो सब चमड़े के होंगे,
माशाल्लाह।
सो इट्स लाइक डूइंग समथिंग रियली वेरी आउटलैंडिश दैट जस्ट,
तो हम उस निजाम से अभी तक निकले नहीं,
हम उससे निकले नहीं है,
ठीक है ना। तो आप भी अग्री करती हैं, आप चीज खाती हैं कि नहीं
नदीम? वैसे मैं आप दोनों इकोनॉमिस्ट हजरात से इस बात से डिसएग्री करती हूं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट इन्होंने हमारी काउंसिल ने की है, जो एडवाइजरी इकोनॉमिक काउंसिल बनी है, उन्होंने ये कहा है कि जो लग्जरी कार्स और लग्जरी गुड्स और लग्जरी की चीजें हैं ना, वो हम बचा लेंगे तो देखें ना, टू पॉइंट वो नहीं हम इम्पोर्ट करेंगे तो 2 point some million रुपीज और डॉलर्स, दिस आई फॉरगेट, वो बच जाएंगे, ठीक है। तो मगर ये कि उनसे कभी कोई ये नहीं पूछता कि जनाबे वाला आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब वही जो अंजुम ने बात की थी कि एवरीथिंग विल देन गेट स्मगल्ड। सो आप लोग जो जो एक प्रोनाउंसमेंट होती है उसकी डिटेल्स क्यों नहीं मांगते, यू नो मे बी देयर इज सम।
मैं तो कहता हूं कि लग्जरी लग्जरी डिफाइन कौन करेगा।
हाँ वही है ना कि भाई हाउ डू यू डिफाइन लग्जरी, जैसे
आपके लिए आपके लिए लग्जरी फॉर एग्जांपल हो सकती है चीज, मेरे लिए शायद नेसेसिटी हो।
हाँ हाँ नहीं वो तो मैं आपकी डिस्कशन सुनी है मैंने, आई क्वाइट एग्री विद यू।
पर अब मसला इधर आ जाते हैं ना, इधर आप बताएं ना हमें बात कि ये ईएसी कह रही है कि जी वेरी क्विकली मैं आपसे पूछूं कि चलें एक्सचेंज रेट का, एक्सचेंज का मसला है, एक्सचेंज का मसला हम एक्सचेंज रेट से क्यों नहीं हल करते, बजाय इससे कि दुनिया में जो हमने कम अज कम अंजुम इकोनॉमिक्स में सीखा था, अगर फॉरन एक्सचेंज शॉर्ट है तो आप एक्सचेंज रेट गिरा दें, जाने दें एक्सचेंज रेट 150 पे, ठीक है। ये इन्होंने पाकिस्तान की शुरू दिन से काम किया है कि एक्सचेंज रेट को हमेशा इन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की है।
वो तो इज्जत का मामला है ना।
हाँ, आपको भी याद है इकोनॉमिक्स 101 में सिखाया जाता था कि आप जब टैरिफ्स लगाते हैं तो अभी इसीलिए या इंपोर्ट कंट्रोल्स करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट को आपने बचाना है। अगर आप एक्सचेंज रेट को 150 पे जाने दें तो वो खुद ही, मैं कोई नंबर मैं नहीं, मुझे मैं तो वैसे ही नंबर ले लिया, यानी कि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आप अगर इसको ऊपर जाने दें, एक्सचेंज रेट को चेंज होने दें तो ताकि डॉलर महंगा हो जाए, तो इम्पोर्ट भी कम होगी और एक्सपोर्ट को भी फायदा होगा, ठीक है। पर मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि एक्सपोर्ट आपका मेरा काम नहीं, ना मुझे करनी आती, करनी आती तो कसम खुदा कि आपके साथ मैं बात ना करता, मैं आज पैसे बना रहा होता, ठीक है। पर और हम ना इस पे बात कर सकते, ये जरूर आपकी बात सही है।
एक बात मैं ये कहूँ
जी, बस कहिए जरूर।
ये तुम कह रहे हो कि हम तुमको और मुझको एक्सपोर्ट करना नहीं आता, मगर हम इतने मजबूर हो गए थे कि हमने अपने आप को एक्सपोर्ट कर दिया था पैसे बनाने के लिए।
ये बात सही है। हाँ, वो है, हम जो चीज एक्सपोर्ट कर सकते थे वो हमने कर दी थी, अपना ह्यूमन कैपिटल वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मसला ये है कि अगर आपने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और समिया कैन कॉमेंट ऑन दैट टू, कि समिया देखें ना, अगर हमारा गवर्नेंस सिस्टम इतना गंदा है तो उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा। अब आपके सेक्टर में समिया आ जाएं, बहुत सारे डॉक्टर मुझे मिलते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तैयार हैं हॉस्पिटल बनाने पे, उनके पास पैसे हैं, वो कहते हैं हॉस्पिटल बड़ी अच्छी बिजनेस है, हम बना लेते हैं। अब उसमें क्यों उनको दुश्वारियाँ होती हैं, क्यों नहीं हॉस्पिटल बना सकते वो?
नदीम होनी नहीं चाहिए अगर वो उनका वो प्राइवेट अस्पताल बना के और उसको वो कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं इंपोर्ट के और उसके और उसके, वो कर सकते हैं, वो अस्पताल तो बना देंगे। बिल्डिंग बनाना और इक्विपमेंट रखना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर जो लोगों ने जिनमें काम करना है उसमें, जो उनको पर्सनल चाहिए, नर्सें और जो जूनियर डॉक्टर्स और जो एक्सरे टेक्नीशियंस और ये बलाबत्तर चीजें होती हैं, वो तो है ही नहीं ना
है?
मतलब उस हॉस्पिटल को बनाना और उस हॉस्पिटल,
आप कह रहे हैं कि टेक्नीशियंस नहीं मिलते?
हाँ, मतलब उस हॉस्पिटल को बनाना और उस हॉस्पिटल को फंक्शनल करना दो मुख्तलिफ चीजें।
नहीं, 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 ये मैं नहीं मान सकता। देखिए इतने हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस है, मेरा ख्याल है हमारे पास सरप्लस डॉक्टर्स नहीं है।
Well, it depends upon how you define surplus. अगर तो आप WHO की definition लेते हैं कि one population में one doctor per so many people, I don't know how many, तो उसके हिसाब से जो जो मेरे colleagues मेरे साथ argue करते हैं जब मैं कहती हूँ कि भाई डॉक्टरों की जरूरत नहीं है इस मुल्क में, तो वो कहते हैं कि भाई WHO तो ये कहता है we are still below that rate, so then we are not surplus.
ठीक,
मगर जो डॉक्टर बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो कुछ कर नहीं सक रहे हैं, तो देन यस देयर इज अ सरप्लस।
तो फिर मुझे बताएं, अगर मैं अमेरिका से अपने डॉक्टर दोस्तों को साथ ले आऊं, पैसे उनके पास हैं और वो अगर एक हॉस्पिटल बना ले, तो क्या उनको ये आराम से डॉक्टर नहीं मिल जाएंगे काम करने के लिए? तनख्वाह की बात ही है ना, तनख्वाह की बात ही है ना,
मिल जाएंगे आपको डॉक्टर, मगर चक्कर ये है ना कि अब आप देखें ये जो जो है ब्राइट आइडिया, सबको यही आता है कि अब हमारे पास बड़े पैसे हैं, चले हम अस्पताल बना लेते हैं। यू नो अस्पताल बनाना इज इज अगर तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं ना कि ये
बिजनेस
पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप बनाएं, मगर आपकी जो पेइंग पब्लिक है वो कितनी है, वो कितना पे कर सकती है। ये कोई अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप तो है नहीं जहाँ पे लोग आउट ऑफ पॉकेट पे करेंगे, ठीक है। अमरीका में भी अस्पतालों में 75% ऑफ इनकम कम्स फ्रॉम थर्ड पार्टी पेमेंट्स, डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट उनको जो है वो बहुत कम पेमेंट मिलती है। फिर अस्पताल बना के फिर आपने प्रॉफिट उसमें से बनाना है, और अगर आपका प्रॉफिट उतना नहीं बन रहा जितना आप बनाना चाह रहे हैं तो वो तो आपके लिए प्रॉब्लम है। मगर आप हुकूमत से सब चीज़ें लेके अस्पताल इसलिए बनाते हैं कि जी आपकी जो हेल्थ स्टेटिस्टिक्स है शहर की वो बेहतर होगी, हेल्थ सर्विसेज बेहतर होंगी, फलाना होगा धमाका होगा, और जब वो कुछ भी नहीं हो पाता तो फिर एवरीबॉडी रन्स इनटू प्रॉब्लम्स एंड दे ब्लेम द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ब्लेम देम। सो एक जो टूटा हुआ और खराब मॉडल है उसके अंदर आप एक पुर्जा जो है उसको थूक लगा के पॉलिश करके और बाहर से ला के फिट
कर। बात वही आ गई जहां अंजुमर में बात कर रहे थे कि अगर आपका जो सिस्टम है वो इतना खराब हो चुका है कि जहां ना कोई ट्रस्ट रहा है, ना कोई क्या कहते हैं सिक्योरिटी रही है, ना कोई आपके ट्रांजैक्शंस का आपको पता चल रहा है कैसे हो रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और उसका हम एक खमियाजा भुगतते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो फिर जमीन में लोग भागते हैं, बिकॉज जमीन कम अज कम एक वही सोने को दबाने वाली बात है, कम अज कम पड़ी तो है ना भाई, जाना तो इसने कहीं नहीं ना, तो कुछ भी नहीं होगा तो हम इसको कम से कम कभी ना कभी बेच के इस्तेमाल तो कर लेंगे। तो ये निज़ाम चल रहा है, और इसको अगर हम चेंज करना है तो हमें गवर्नेंस चेंज करनी है, हमें चीज़ को नहीं बंद करना, हमने अपना गवर्नेंस सिस्टम चेंज करना है। क्यों, इस पे एग्रीमेंट है आप लोगों की कि नहीं?
मेरी नहीं है नदीम।
अच्छा, ओहो, बताइए क्यों?
मेरी नहीं है। मैं ये आपसे, हाँ, वो इसलिए नहीं है बिकॉज व्हाट आई से सर्टेनली फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, बाकी मुझे चीज़ और उन चीज़ों का नहीं पता सवाई खाने के, मगर हेल्थ सेक्टर में गवर्नेंस बदलने से कोई खास इतनी चेंज नहीं आएगी। हेल्थ सेक्टर में द मॉडल नीड्स टू चेंज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस।
नहीं, सॉरी, दैट्स व्हाट आई मीन इन द सेंस कि जब मैं गवर्नेंस कह रहा हूँ, हाउ द सिस्टम वर्क्स, देखे ना, वंस यू चेंज द अंडरपिनिंग्स ऑफ 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 द सिस्टम, सिस्टम तो अल्टीमेटली देखे ना क्या होता है, एक रेगुलेटरी निज़ाम होता है, एक उसका मतलब, अगर टेनिस की गेम खेलनी है तो एम्पायर इज द गवर्नेंस ना, बट वो एम्पायर में किसने चलता है, वो रूल्स पे चलता है ना। तो अगर आपने एम्पायर और रूल्स खराब कर दिए, तो अगर एम्पायर बैठ गया जो एक को फेवर कर रहा है, रूल बदल रहा है किसी की मर्जी के लिए, रूल को कुछ कर रहा है, उसको इंटरप्रेट गलत कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली मार्केट तो नहीं ना चलती। तो यही आप बात कह रही हैं कि गवर्नेंस हेल्थ की मार्केट भी नहीं चलेगी अगर ये होगा।
हाँ, आप आधा रास्ता 50% मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, मगर मैं उससे भी उससे जरा आगे थोड़ी
बताइए, गई हूँ। बताइए फिर, जल्दी से बताइए आप क्या।
हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हेल्थ सेक्टर में जो एक स्ट्रेस है ना हर एक का, ये सोचने का कि भाई हेल्थ को ठीक करना है तो चलो हम प्राइवेट अस्पताल बना देते हैं, अस्पताल बना देते हैं। जब मैं कहती हूँ मॉडल की मैं बात करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि भाई आपका मुल्क जो है वो बड़ा रिसोर्स कंस्ट्रेंड मुल्क है। बेशक आपको डॉक्टर मिलते हैं, आपको नर्सें भी बेचारी टूटी फूटी मिल जाती हैं, बट स्टिल द क्वालिटी इज वेरी वेरिएबल एंड दे आर स्टिल बिलो द नंबर दैट इज नीडेड। सो समथिंग एल्स नीड्स, सम अदर मॉडल नीड्स टू बी पुट इनटू प्लेस, जिसमें अस्पताल कैन बी पार्ट ऑफ दैट मॉडल, बट इट शुड नॉट बी द सेंट्रल पिलर जिसमें जो है वो के जी अस्पताल बना दे। आपके और हमारे जो डॉक्टर साहिबान अमरीका में और बाहर रहते हैं, उनके साथ ही जब बात होती है तो वो इस चीज इसको सुनने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं जी देखिए ना, बिकॉज ये जो डिजीज बेस्ड मॉडल है जिसमें आपने पहले अस्पताल कौन आता है, अस्पताल बीमार लोग
आते हैं,
ठीक है। सो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप बैठ के पहले बीमार हुए फिर आप जाएं और आप जाके इलाज कराएं और उस इलाज के पैसे दें। सो समथिंग एल्स नीड्स टू बी थॉट अबाउट। मैंने अभी एक जो थोड़े कुछ दिन पहले बात की थी फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट से, तो उनको और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन हुआ उनको। मैंने कहा कि वो हर वक्त रोते हैं यहाँ पे कि जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे इतने नमोनिया से आते हैं और बच्चे इतनी डायरियाज के साथ आते हैं और फिर वो ठीक ही नहीं होते। भाई वो ठीक इसलिए नहीं होते बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड। मेल नरिश्ड चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ वेरी प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम। सो आप उनमें दवाइयाँ जितनी मर्जी पंप कर दें, आप जो मर्जी कर दें, इन बच्चों ने ठीक नहीं होना बिकॉज दीज किड्स आर बेसिकली मेल नरिश्ड and most of them are basically eating and drinking shit outside. You know, वो बाहर defecation होती है और वो अपने आप को बार बार infect करते हैं. तो ऐसे बच्चों को आप heroic measures ला के मूलचंद अस्पताल में जो है वो बड़ा अच्छा करती हैं. वो लड़कियाँ बड़ी brave हैं. वो पूरी पूरी रात बच्चे को पास बैठ के उसको, तो उनको मैंने कहा कि आप इन बच्चों को बचाना चाहती हैं? उन्होंने कहा हाँ जी, हम तो अपनी जान मार रहे हैं बचाने के लिए. तो मैंने कहा अगर इनको बचाना चाहते हैं तो फिर आप लेटरीन्स बनाएं और इन बच्चों को खाना खिलाएं. तो उन्होंने कहा ले हूँ असी अड्डा पढ़ के जाके हूँ असी जाके लेटरीन बनाइए, ए कुछ साडा काम है.
नहीं पर ये तो देखिए ना, डिफरेंस इज पब्लिक हेल्थ वर्सेस मेडिसिन, ठीक है ना.
हाँ मतलब ये नो द थिंग इज ये दैट डिफरेंस आल्सो नीड्स टू एंड. लेट मी जस्ट फिनिश दिस बाय दिस लास्ट थिंग कमेंट. बात लंबी कर रही हूँ. अगर ब्रिटेन में जब लेट मिड 19th सेंचुरी में एग्जैक्टली यही स्टैटिस्टिक्स थी और यही हालात थे, वहां पे एक मैसिव हेल्थ रिफॉर्म हुआ था. दैट हेल्थ रिफॉर्म वॉज बेसिकली अ सैनिटेशन रिफॉर्म, क्योंकि सब लोग इसी तरह नमोनिया और डायरिया से मर रहे थे ईस्ट एंड और सम प्लेस आई फॉरगेट वेयर. तो उन्होंने कहा कि ये सब मर रहे हैं बिकॉज द सैनिटेशन, बिकॉज द वाटर सप्लाई वॉज बींग कंटेमिनेटेड बाय द सुअर. तो ये देर वॉज अ ह्यूज सैनिटेशन रिफॉर्म एंड दैट सैनिटेशन रिफॉर्म वॉज लेड बाय द लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ द सिटी. ठीक है, सो डॉक्टरों ने कहा हाँ हम लोगों ने यहाँ पे लेटरीन्स बनेंगी अलग से और यहाँ पे साफ पानी आएगा और फिर हम अस्पताल में इन लोगों को एडमिट करेंगे, वरना हमने अस्पताल नहीं बनाने और हमने इलाज नहीं करने और हमने नहीं करना. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि ये पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन की सेपरेशन इज वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल लाइक अस हु अर्न आवर लिविंग फ्रॉम दिस डिजीज थिंग. भाई गवर्नमेंट को तो एक लार्जर परस्पेक्टिव में सोचना है ना, और इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज जिन लोगों के पास साफ पानी और साफ सैनिटेशन है भी, उनको भी हेल्थ केयर की जरूरत होती है. दैट इज नॉट टू से कि वो कोई और डिपार्टमेंट आपको देगा और कोई और
डिपार्टमेंट.
हाँ, सो मैं उसको जब आप गवर्नेंस कहते हैं ना तो मैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें सुन.
नदीम, दो चीजें हैं कि बहुत आर नेसेसरी कि इन 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 सम सेक्टर्स एक मुख्तलिफ मॉडल चाहिए ऑफ सर्विस, यू नो, डिलीवरी और प्रोविजन. मगर साथ साथ जो भी मॉडल हो उसकी रेगुलेशन में रूल्स जो हैं उनकी अपनी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. अगर वो रूल्स आप हर रोज चेंज करते रहेंगे तो कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा. और वो आज हम उसमें आज क्या हमेशा से उसी में है कि जो नई हुकूमत आती है वो सारे रूल्स चेंज करने की कोशिश करती है क्योंकि उसमें को पॉलिटिकल माइलेज है कि वो तो ऐसे करते थे हम ऐसे करेंगे.
बिल्कुल सही. अंजुम देखें, बात सिंपल है. सिंपल तो नहीं, खैर बहुत मुश्किल बात है और लोग हमारे मुल्क में तो लोग समझ नहीं रहे. आपने बिल्कुल बड़ी सक्सेंटली इसको बड़े अच्छे तरह समराइज कर दिया. बात वही आ जाती है जो टेनिस वाली कि सरीना विलियम्स और वो मैच खेल रहे थे यूएस ओपन का, अंपायर ने बीच में गन डाला, अपने आप रूल्स चेंज किए बदले और उसको सरीना विलियम को हरा दिया. अब आज इतनी शोर मच रहा है, यहाँ इतना शोर मच रहा है कि भाई इसने अंपायर ने किया क्या. हमारे यहाँ भी बिल्कुल यही है, हुकूमत का रोल अंपायर की तरह होना चाहिए और रूल्स पीछे से लिखे जाने चाहिए. रूल चेंज करते करते बड़ा टाइम लगता है, बड़ी देर लगती है. और यू आर एब्सोल्युटली राइट, समिया इज राइट कि हर सिस्टम का अपना रोल होता है. हेल्थ का अपना रोल है, एजुकेशन का अपना तरीकेकार और उसके तहत आपको सोच समझ के बनाना चाहिए. उसके साथ फिर मसला ये भी आ जाता है कि सोच भी तो होनी चाहिए ना. हमारे मुल्क में तो सोच ही कोई नहीं. अब फॉर एग्जांपल समिया से अगर पूछें कि हेल्थ केयर के बारे में कौन सा थिंक टैंक है, कौन सोच रहा है, कोई भी नहीं. अगर आप किसी चीज में भी ले लें, वाटर के ऊपर कोई रिसर्च नहीं, कोई थिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं. तो हमारे सिस्टम तो 19th सेंचुरी वाले चले आ रहे हैं ना, हम उनको चलाई जा रहे हैं रगड़ रगड़ के चले.
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो तुमने कहा ना कि हुकूमत जो है वो अंपायर है, तो एक जो अंदर की बात है वो ये है कि हमारे मुल्क में हुकूमत अंपायर नहीं है, अंपायर कोई और है. इसमें बहुत बड़ी आयरनी ये है कि तुमको ये याद होगा कि क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर जो थे वो इमरान खान की उस पे जो थे शुरू हुए थे. इमरान खान की डिमांड पे न्यूट्रल अंपायर आए थे और वो ही आदमी जो है वो कह रहा है कि अंपायर उंगली उठा देगा. तो हुकूमत तो अंपायर नहीं है ना, अंपायर तो कोई और है.
नहीं यार, मैं नहीं मानता ये. नहीं, ये एक और डिबेट है. हुकूमत देखें, हुकूमत अगर आप चले जाएं फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में, वहाँ तो हुकूमत ही अंपायर है ना यार, वहाँ तो कोई नहीं इंटरफेयर कर रहा. अगर आप चल जाएं, आप लार्जर बात कर रहे हैं तो और बात है. बट बहुत सारे सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज में चल जाएं, यूनिवर्सिटीज में यार हुकूमत कैन डू अ लॉट, या आप चल जाएं स्कूलिंग में चल जाएं या एविएशन में चल जाएं, पब्लिक सर्विसेज में हुकूमत कैन डू अ लॉट अभी भी। बाकी ये हाँ पब्लिक सर्विस में तो कोई इतनी इंटरफेरेंस नहीं है।
नहीं नहीं इंटरफेरेंस तो नहीं है, मगर ये डिवाइडेड अंपायरिंग जो है ना उसकी वजह से इन सेक्टर्स में इतने कम रिसोर्सेज रह गए हैं। मतलब देन वी हैव टू गो बैक टू दिस कि ये कैसे हो गया कि बांग्लादेश जो है उसकी एक्सपोर्ट्स हमसे डबल कैसे हो गई।
यार मैं आपको बताता हूँ कैसे हो गई। बंगाली हमसे हमेशा ही ज्यादा अकलमंद थे, कोई नई बात तो नहीं है। ये चीज आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? या हर बंदा यही सवाल पूछता क्या बांग्लादेश क्या यार आपको याद है जब हम इकट्ठे थे सारे इकोनॉमिस्ट ईस्ट पाकिस्तान से आते थे।
हाँ,
हमारा तो कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं।
ठीक है
ना। उसके अलावा भी आप देख लें पोइट्री लिटरेचर वगैरह सब कुछ बंगाली आगे रहे हैं यार। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वो आगे निकल गए। क्या हो गया, उन्होंने क्या खास चीज की है? कुछ नहीं किया। और वो कोई इतना आगे भी नहीं निकले, इंडिया भी हमसे कोई इतना आगे नहीं निकला। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या हम अपनी सिस्टम में सोच डाल सकते कि नहीं।
तो ये डिनाई नहीं कर सकते ना कि बांग्लादेश बनने के बाद जो कश्मीर का बर्डन था वो बांग्लादेश के सर पे से उठ गया।
यार देखे मेरी बात सुने, खुदारा ये आपकी बात बिल्कुल नहीं ठीक।
क्यों?
क्योंकि देखें हमारे पास बहुत बड़ा टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो बांग्लादेश के पास नहीं है। ठीक है, वो कहां से आया? हम पागल हैं यार, हमारे पास हैं ये फंडामेंटलिस्ट, क्या करें? आपने देखा नहीं आतिफ मियां का क्या हुआ? वो लोगों को नहीं यार, वेदर यू लाइक देम और नॉट, दे कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ पाकिस्तान।
देखो नदीम,
क्या करें?
मैं ये कह रहा
हूं, डिबेट देखें, हम चीज पे बात कर रहे थे, अब चीज से कहीं और ले गए, ठीक है ना? अब इसको चीज पे रहने दे, ठीक है? अभी
तो आज सुबह से कह रही हूँ मूड माय चीज।
हाँ बिल्कुल, मैंने आज रेकमेंड किया, सारी मैं कमेटी को भिजवा रहा हूँ किताब हु मूव माय चीज, जो आपने कही ना वो मैं भिजवा रहा हूँ सबको कि ये पढ़ ले। और आई स्वेयर स्लोगन ही हमारा ये होना चाहिए, हु मूव माय चीज टुडे। चले अंजुम, नाइस टू टॉक टू यू।
नहीं एक बात बताते जाओ यार, बताओ जो है मुल्क समर जाएगा, ये तो मतलब कोई होमवर्क भी तो कोई करता है ना एक पॉलिसी बनाने से पहले।
नहीं, होमवर्क तो हम करते ही नहीं, हमने कब किया होमवर्क? देखिए ये मेरी यही तो मेरा आपसे इख्तलाफ है, बार बार आपको मैं कहता हूँ, हमारे मुल्क में आप प्लीज, आप माशाल्लाह पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, डीन रहे हैं यूनिवर्सिटीज में वगैरह वगैरह, समिया बीबी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, पढ़ाती रही हैं, आप प्लीज मुझे बताएं हमारे मुल्क में सोच है कहाँ? We don't think as a people, we don't think. अब समिया ने किताब लिखी है, मैंने किताब लिखी है, आप लिख सकते, कितने लोग पढ़ते हैं आपके, मैं रोज आठ, कितने लोग पढ़ते हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। खुद जाके किताब मुफ्त पकड़नी पड़ती
है। I actually disagree with you that people don't think. People do think, मगर they think what they themselves understand up to the level that they understand, and they think about themselves and how something is going to work for them.
नहीं, फिर ये तो देखे ना, आपने एक इंटरप्रिटेशन ऐसी कर दी है, वो तो हर जानवर भी ऐसे सोचता है, ठीक है ना? हर जानवर भी अपने बारे में सोचता है, हर जानवर भी सोचता है सर्वाइवल, वो तो आप सर्वाइवल की बात कर रही हैं, ठीक है? पीपल डोंट थिंक, जब मैं कहता हूँ थिंक इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, वो हमारे यहाँ नहीं होता यार, बात ही नहीं होती, ठीक है? तो अब मसला ये है कि ये कहना कि जी
नहीं नदीम, मैं भी डिसएग्री करूंगा कि देखो अब जिन्होंने ये कहा है कि चीज नहीं खानी चाहिए, वो लार्जर इंटरेस्ट में सोच रहे हैं ना, अपने इंटरेस्ट में तो नहीं सोच रहे हैं, चीज तो उनको भी पसंद होगी।
नहीं नहीं एक मिनट, वो लार्जर इंटरेस्ट में नहीं सोच रहे, वो एक जरा इस पर प्लीज डिफ्रेंशिएट कर लें। थिंकिंग मीन्स कि आप कुछ ना कुछ सोच के बात करेंगे, ये तो अहमी बात करने के लिए कर दी ना, एक ग्रैंड स्टैंडिंग है, तकरीर करनी है, मैंने तकरीर कर दूंगा, ठीक
है? नहीं नदीम, आई डिसएग्री विद यू। इन्होंने बिल्कुल सोच के कहा है, बिकॉज दे से के 2 बिलियन डॉलर्स बच जाएंगे साल के और वो बड़े अच्छे हो सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज ये खुली हैं पाकिस्तान में नई, ये जो सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब मेडिकल यूनिवर्सिटीज बन गए, उनकी सबकी वो है सिंडिकेट है, फलाना और धमाका है, उनकी आप बातें सुनो, उन्होंने बड़ा सीरियसली सोचा हुआ है कि हमने क्या बनना है और हमने क्या करना है। It's not that they are not thinking, but what they are thinking is completely bizarre. That's what I feel. जब वो कहते हैं कि हमने फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसको साउथ एशिया का लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है। दैट इज देयर थिंकिंग,
ठीक,
और उसको कैसे बनाना है वो उसकी डिटेल्स भी बताते हैं, दैट इज देयर थिंकिंग।
इस पे तो बहुत लंबी बहस हो सकती है, बट लेट्स पुट इट दिस वे वेरी सिंपली कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं टू एंगेज इन अ हायर लेवल थिंकिंग, जहां हम अपने इश्यूज को डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। हम बड़े सिंपलिस्टिक किस्म की चीज़ें करके सोचते हैं कुछ हो जाएगा, बड़े ग्रैंडियोस टारगेट्स फिक्स करके साथ सिंपलिस्टिक चीज़ें फिक्स करके कर लेते हैं। चलें तो जनाब बहुत शुक्रिया, तो इंशाल्लाह अंजुम फिर व्हेनेवर यू रिटर्न फ्रॉम योर जर्नीज अगेन वी शुड डू दिस अगेन, ठीक है। सैरें जब आप कर रहे हैं अपनी वापस, जब भी जंगलात से और जहां भी आप सोच में फंसे रहते हैं, ठीक है।
हाँ, आते हुए चीज जरूर ले आना,
मैं ले आऊंगा बिल्कुल, ठीक है। खुदा
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।